ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया, बाबा ने कहा कि बाप तो चाहते हैं मेरा हर एक बच्चा राजा बने, तो राजा बनने के लिए पुरुषार्थ भी करना है और प्रजा भी बनानी है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बाप तो बच्चों को बहुत प्यार देते हैं, लेकिन बच्चों को बाप का प्यार पाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, आत्म अभिमानी बनना है। साथ साथ बाबा ने आज कहा कि बाबा बच्चों को टॉपिक्स देते हैं। कई बार होता है ना, कोई काम प्रोग्राम करना है, कौन सा टॉपिक रहे कौन सा टॉपिक रहे, तो बाबा बीच बीच में मुरली के अंदर कई पॉइंट्स भी देते थे, टॉपिक भी देते थे। और बाबा कहते टॉपिक देता हूँ, बच्चों को इस पर विचार सर मंथन करना है, विचार सर मंथन करके पॉइंट्स लिखें और फिर उसके बाद उसको देखें कि कौन से पॉइंट मिस है, तो ये बच्चों को पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को इस संगम युग के अंदर कौन सा पुरुषार्थ करना है, शिव बाबा के बच्चे आपस में भाई भाई है और ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन है, तो भाई बहन होने के कारण दृष्टि जो है वो पवित्र होनी चाहिए, पवित्र दृष्टि रहेगी, नहीं तो कई बार अपवित्र बनती है। उसके लिए बाबा ने ध्यान खिंचवाया है कि संगम युग पर ब्राह्मणों की दृष्टि अपवित्र बन ही नहीं सकती है, ब्राह्मण ही पवित्र बनते हैं। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 20 जून 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना है तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना है तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। आज का प्रश्न है, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? इसका उत्तर है, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करनी पड़ती। कोई कहता नहीं है, ज्ञान सुना, अपने आप उसकी धारणा पर चलते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो, भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सके। फरिश्ता बनना है, अपनी दृष्टि को पूर्ण रीति से पवित्र बनाना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ यहाँ बैठना। बाबा साकार में जब आते थे, मुरली चलाते थे, तो पहले बाबा दृष्टि से ही समझ आते थे कि किस प्रकार से किस स्थिति में बैठे हैं, तो बाबा फिर उस बात को रिमाइंड कराते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। ये राज तुम बच्चों को भी समझाना है। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं, बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले। तीन बातें, एक है आत्म अभिमानी होकर बैठना है, बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं और बाबा हम बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। इस याद सारा दिन बुद्धि में रहे, परंतु बाबा को भी पता है इसमें मेहनत है। भूल जाती ना, ये याद सारा दिन बुद्धि में रहे इसमें ही मेहनत है। ये घड़ी घड़ी भूल जाते, बाबा कहते क्यों भूल जाते हो, तो खुशी का पारा भी डल हो जाता। बाबा की याद भूली तो खुशी भी कम हो जाती, तो ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है। बाबा सावधान करते, होता है ना कोई स्कूल में टीचर सावधान करते, तो बाबा सावधान करते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझो, अभी आत्मा और परमात्मा का मेला है। मेला लगा था लेकिन कब लगा था, कहते ना आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ, बाबा कहते मेला कब लगा था, ये भी बच्चे भूल जाते हैं। मेला लगा था लेकिन कब लगा था, जरूर कलयुग अंत और सत्युग आदि के संगम पर ही लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पर समझा दे, कभी कभी बाबा बहुत से पॉइंट्स देते, कभी कभी बाबा एक ही पॉइंट पर बच्चों को समझाते, तो आज बाबा कह रहे हैं आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है, कई बार बच्चे बाबा से पूछते थे ना, उस समय प्रोग्राम करने होते थे, बाबा को पूछते थे बाबा किस बात पे समझाएं, किस टॉपिक पर समझाएं, तो बाबा कहते बाबा बता रहे हैं टॉपिक, तो उस टॉपिक को लेना है। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है, ऊंचते ऊंचे भगवान, फिर नीचे आओ ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाप और देवताएं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है, किसी को भी उनके जीवन कहानी का भी पता नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र भी नामी ग्रामी है, ये तीनों है देवताएं। सिर्फ तीन धर्म थोड़ी होता है, बाबा कहते त्रिमूर्ति में बताते हैं या तीन देवताएं बताते, बाबा कहते केवल तीन से थोड़ी धर्म बन जाता है, धर्म में तो बहुत होते हैं ना, ये तीन का धर्म थोड़ी होता है, धर्म तो बड़ा होता है। डीटी धर्म ये है सूक्ष्म वतनवासी, ऊपर में है शिव बाबा, वहां दिखा ना त्रिमूर्ति में, ऊपर शिव बाबा है, बीच में ब्रह्मा विष्णु शंकर है, तो बाबा कहते हैं ये है सूक्ष्म वतनवासी, ऊपर में है शिव बाबा, मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। अभी बाप समझाते हैं तुमको टॉपिक देने हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। जैसे तुम कहते हो हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, वैसे इनका भी है शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य, तो बाबा कहते इनका भी वैसे है। पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा, वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ये तो रॉन्ग है ना, ये तो हो नहीं सकता है कि आत्मा ही परमात्मा है, तो बाबा कहते तो हो नहीं सकता है। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। कोई कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण के तन में आए हैं, अगर श्री कृष्ण के तन में आए तो फिर ब्रह्मा का पार्ट खत्म हो जाता, कहा जाता ना कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो बाबा कहते फिर क्या होगा, ब्रह्मा का पार्ट खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, वही पति कैसे हो सकते हैं, बाबा कहते हैं जिनको आकर के पावन बनाए, बिल्कुल ही गलत है। ये बातें भी महारथी बच्चे, सर्विस एबल बच्चे ही समझते हैं, बाकी तो किसकी बुद्धि में है नहीं। ये टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है, कौन सी ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन, ब्रह्म और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है, तो बाबा की तरह बताओ हम उनकी जीवन कहानी बताते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है। शुरू में ऐसे करना है ब्रह्मा सो विष्णु एक सेकंड में, तो बाबा की तरह से समझाएंगे ना, तो फिर वो धीरे धीरे आने लगेंगे। ब्रह्मा सो विष्णु एक सेकंड में, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के, प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहाँ से आया? वो ब्राह्मण कुल के, लेकिन ये ब्राह्मण कुल कहाँ से आया? तो बाबा की तो ये भी समझाना चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहाँ से आया? प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना, नई दुनिया है सतयुग, वहाँ तो प्रजापिता है नहीं। कलयुग में भी प्रजापिता नहीं, न सतयुग में है प्रजापिता, न कलयुग में। प्रजापिता कहाँ है? संगम युग पर। कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता, नहीं, ये है संगम युग पर। अभी तुम संगम युग पर हो, शूद्र से ब्राह्मण बने हो, बाप ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने इनको कैसे रचा? बाबा कहते एक तो मैंने अडॉप्ट किया, बाकी ऐसे तो नहीं रचा ना, शिव बाबा ने इनको कैसे रचा ये भी कोई नहीं जानते। त्रिमूर्ति में रचयिता शिव का चित्र ही नहीं है, शिव बाबा ने तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंचते ऊंच भगवान है। तो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति में रचयिता शिव का चित्र ही नहीं है, तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंचते ऊंच भगवान है, बाकी सब है उनकी रचना। वह है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। वह कलयुग में तो हो न सके, सतयुग में भी नहीं है प्रजापिता ब्रह्मा, न सतयुग में न कलयुग में, केवल संगम युग पर है। गाया भी जाता है तो बाबा बता रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के लिए गायन करते हैं, गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं, प्रजापिता ब्रह्मा वह कहाँ का है? जरूर संगम युग का ही कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी और ब्राह्मण भी दोनों कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? संगम युग के। प्रजापिता ब्रह्मा ना सतयुग में है ना कलयुग में, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर ही लगी है, ना कि सतयुग या कलयुग में। पांडव और कौरव ये भी है संगम पर। पांडव और कौरव कब होते वो भी बाबा समय बता रहे हैं, ये भी है संगम पर। तुम पांडव संगम युगी हो, वो कौरव कलयुगी है। गीता में भी भगवानों वाच्य है ना, तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय, तुम रूहानी पंडे भी बनते हो। पांडव भी हो और रूहानी पंडे भी बनते हो, और तुम्हारी है रूहानी यात्रा, खुद भी यात्रा करते और कराते हैं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो तुम बुद्धि से करते हो। यहाँ बैठे कोई कहने हम तो यात्रा करें, आपको देख करके लोग कहेंगे क्या बोलते, बैठे हुए आराम से सोफे पे बैठे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, रिलैक्स होके बैठे हैं, यात्रा थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते तुम्हारी जो यात्रा वो बुद्धि की यात्रा, उनकी यात्रा स्थूल है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो तुम बुद्धि से करते हो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। क्या करना है? याद की यात्रा पर रहो, जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं, वह आधा कल्प चलती है। ये संगम युग की यात्रा एक ही बार की है, तुम जाकर के मृत्यु लोक में वापिस नहीं आए, वो सब यात्रा करके अपने घर वापिस आ जाते, फिर वही दुख की बातें, वही अशांति की बातों में आ जाते। बाबा कहते तुम ये यात्रा करेंगे, ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ पर कोई भी दुख अशांति नहीं है। तुम जाकर मृत्यु लोक में वापिस नहीं आएंगे, पवित्र बनकर फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है, इसलिए तुम अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो कि अब अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के, कितनी बार बाबा ने पक्का कराया, बाबा कहते तुम जानते हो कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर हम कौन से संप्रदाय में जाएंगे, दैवी संप्रदाय में, दैवी संप्रदाय विष्णु संप्रदाय के बनते, दैवी संप्रदाय मीन्स विष्णु संप्रदाय। अभी तुम जानते हो कि हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय विष्णु संप्रदाय बनते हो। सत्यु में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय है, वहाँ चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है कि ये विष्णु संप्रदाय। चतुर्भुज मीन्स दोनों स्त्री और पुरुष, तो दोनों की पवित्र है, इसलिए बाबा कहते हैं जिससे मालूम पड़ता है ये विष्णु संप्रदाय है। यहाँ प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय है। तो ये टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाए, कौन से विष्णु संप्रदाय और रावण संप्रदाय में क्या अंतर है। तो बाबा कहते ये टॉपिक रखेंगे ना तो लोग ध्यान से भी सुनेंगे, ये टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। तुम अब देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, एडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहाँ है और देवताएं कहाँ है? है बताओ, देवताएं कहाँ? बाबा कहते ब्राह्मण भी यहाँ, देवताएं कहाँ है? देवताएं यहाँ है, बनेंगे भी, बने नहीं है, बनने वाले ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण भी यहाँ है, फिर देवता भी यहाँ बनेंगे। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, एडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहाँ है, फिर देवता भी यहाँ बनेंगे। डायनेस्टी भी यहाँ ही होती है, डायनेस्टी राजाई को कहा, राजाई मीन्स राजधानी, पूरी राजधानी चलती है। विष्णु की डायनेस्टी है, ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं कहेंगे, डायनेस्टी में राजाई चल, ब्राह्मणों की डायनेस्टी क्यों नहीं कहेंगे, ब्राह्मणों में कोई राजा ही नहीं चलती, ब्राह्मणों में तो केवल पुरुषार्थ ही करते ना। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं कहेंगे, डायनेस्टी राजाई को कहा जाता है। विष्णु की डायनेस्टी है, ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं कहेंगे, डायनेस्टी में राजाई चलती है। एक पिछाड़ी दूसरा फिर तीसरा, है ना, जैसे लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलेगा ना। तो बाबा कहते वो चलती डायनेस्टी, राजधानी चलती है, ब्राह्मणों में तो ऐसा नहीं कि पहला ब्राह्मण दूसरा ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण, फिर बाबा बता रहे हैं ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं कहेंगे, डायनेस्टी में राजाई चलती है। एक पिछाड़ी फिर दूसरा फिर तीसरा, अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुलभूषण, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो विष्णु कुल में और विष्णु कल से आते, कल में आते, ब्राह्मण सो विष्णु कुल में, बाबा कहते हैं विष्णु कुल में आते हैं, फिर क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। तो बाबा ने क्या करके दिखाया, बाजोली, ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, शूद्र सो ब्राह्मण। बाजोली देखी है कहीं ने कि नहीं, बच्ची वाले बताओ बाजोली देखी है, हाथ खड़ा करो, समझते हैं बाजोली क्या होता है। वो नहीं जैसे भक्ति में यात्रा करने जाते ना, सिर के ऊपर रखा फिर ऊपर घूमा फिर ऊपर घूमा, तो उसको बाजोली करते हैं। तो बाबा भी आज क्या बता रहे हैं कि तुम्हारी बाजोली है ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, फिर शूद्र सो ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं, बाबा बता रहे हैं, फिर देवता बनते हैं, ब्राह्मण सो विष्णु कुल के हैं, विष्णु कुल में आते हैं, क्षत्रिय वंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अर्थ कितना क्लियर है, चित्रों में तो क्या क्या दिखाते हैं। हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते, नशा चढ़ाया, हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। इसमें मूंझना नहीं चाहिए, उलझन होती है क्या करेंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनना तो है, नहीं भी बनेंगे बाबा कहते मैं तो सबको बना दूंगा, कोई कहे नहीं बनना है उनको बनना है क्योंकि पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो बाबा कहते हैं इसमें मूंझना नहीं चाहिए। बाबा जो ऐसे ऐसे मीन्स निबंध नहीं, टॉपिक, बाबा जो ऐसे निबंध देते हैं उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए, किसको कैसे समझाएं। जो मनुष्य वंडर खाए इनकी समझाने तो बहुत अच्छी। बाबा के बच्चे जब ज्ञान सुनाते हैं तो बाहर वालों को लगता है कि इनके जो एक्सप्लेनेशन है और इनके पास ज्ञान जो बहुत स्पष्ट है, तो ये किसने सिखाया, बाबा ने सिखाया ना, तो बाबा कहते वो जो वंडर खाएं कि इनकी समझाने बहुत अच्छी है, सिवाय ज्ञान सागर के और तो कोई समझा न सके। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए, है सब ऐसे कोई भी टॉपिक पर विचार सागर मंथन करके फिर लिखते हैं, फिर उसको रिव्यू करते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। फिर पढ़ूं तो ख्याल में आएगा ये अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा के टाइम पर कोई भी टॉपिक बनाते थे, बाबा को दिखाते थे, पॉइंट्स बताते थे, बाबा उसमें एडिशन कराते थे। बाबा के टाइम पर कोई भी नए चित्र बनते थे, बाबा को दिखाते थे, चित्रों में भी बाबा एडिशन करते थे, करेक्शन भी करते थे। बाबा कहते थे अक्षर जो एक्यूरेट हो, और अक्षर भी छोटे नहीं हो, बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए। तो बाबा हमेशा कहते थे कुछ भी करो इतना अच्छा क्लियर हो जो पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। तो बाबा कहते हैं मनुष्य समझे इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है, सिवाय ज्ञान सागर और तो कोई सिखा ना सके। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए, फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा ये अक्षर ऐड करने हैं। बाबा भी फिर बता रहे, बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते। शुरू में साकार बाबा भी क्या करते थे, अमृत वेले उठ करके मुरली लिखते थे, और मुरली लिख करके फिर मम्मा को देते थे, मम्मा पढ़ करके सुनाती थी, मम्मा भी विचार सागर मंथन करके सुनाती थी। तो बाबा बता रहे हैं बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है। यहाँ तो सुनेंगे, धारण करेंगे और बाहर जाकर सुनाएंगे। ये टॉपिक बड़ी वंडरफुल है, ब्रह्मा सो विष्णु इनको कोई जानते नहीं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू दिखाते ना, उसके बाद कौन आया कौन आया। तो बाबा कहते दिखाते हैं तो इसका रहस्य क्या वो भी समझाना चाहिए। जैसे गांधी की नाभि से नेहरू, परंतु डायनेस्टी तो चाहिए ना, गांधी की नाभि से नेहरू दिखाया पर डायनेस्टी तो नहीं चलती ना, परंतु डायनेस्टी तो चाहिए ना। ब्राह्मण कुल में राजाई अथवा डायनेस्टी नहीं है, ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते हैं डीटी डायनेस्टी, फिर चंद्रवंशी डायनेस्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डायनेस्टी में, ऐसे हर एक की डायनेस्टी चलती। कुछ भी कोई भी धर्म स्थापन होते हैं उनकी डायनेस्टी चलती है। सतयुग है वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग है विशेष वर्ल्ड, ये दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं। वाइसलेस किसको कहा जाता, विशेष किसको कहा जाता, बाबा कहते ये भी दोनों बातें छोटे छोटे पॉइंट है, वो समझते नहीं है। ये दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है, नहीं तो ये जरूर बुद्धि में होना चाहिए। विशेष और वाइसलेस कैसे बनते, ये भी टॉपिक बन सकता है, विशेष एंड वाइसलेस। ये भी बुद्धि में होना चाहिए कि विशेष और वाइसलेस कैसे बनते। मनुष्य न वॉइसलेस को जानते हैं न विशेष को। तुमको समझाया जाता है कि देवताएं वॉइसलेस थे, ऐसे कभी सुना नहीं कि ब्राह्मण वॉइसलेस थे। ब्राह्मण तो पुरुषार्थ करते ना पवित्र बनने का, तो बाबा कहते ऐसे कभी सुना नहीं कि ब्राह्मण वॉइसलेस हैं। नई दुनिया है वॉइसलेस, पुरानी दुनिया है विशेष, तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े। इसका तो किसको पता ही नहीं किसका संगम युग क्या है, कब होता है। तो बाबा कहते ये इसका तो किसको पता ही नहीं है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं, ये 3 वर्ष के बाद 1 मास आता है, होता है ना उसको लीप मंथ कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। 3 वर्ष के बाद 1 मास आता है। तुम्हारा 5000 वर्ष के बाद उनका होता है 3 वर्ष के बाद। बाबा कहते तुम बच्चों का तुम्हारा 5000 वर्ष के बाद संगम युग आता है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं। आत्मा के लिए क्या कहते हैं, चमकता है अजब सितारा ब्रिकुटी में, बोलते रहते लेकिन समझते कुछ नहीं है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं चमकता है अजब सितारा। बस दिखाते हैं कि राम कृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था कि मैं गुरु के सामने बैठा था। गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना, वो कहानी सुनाते ना, गुरु के सामने बैठे थे, कैसे उसको लाइट दिखाई दी और लाइट अंदर में प्रवेश कर गई। तो बाबा कहते हैं गुरु का भी तो ध्यान करते हैं ना। अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो, ध्यान की तो बात ही नहीं है, गुरु की ही याद है। क्या करना है, बाबा को याद करना है जो सतगुरु है। तो बाबा कहते हैं उसको याद करना, गुरु तो याद ही है, खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या। खास बैठते हैं उनको याद करना भी है, कभी कभी बुद्धि इधर भटकती है। तो बाबा कहते चलते फिरते भी बाबा को याद करो। उनकी गुरु में भावना थी ये भगवान है, तो देखा कि उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई। उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, ये क्या हुआ, कुछ भी वर्णन नहीं। बस उसे तो अपना अनुभव सुनाया है, लेकिन क्या हुआ कैसे हुआ बाबा कहते वो तो डिटेल में नहीं बताते ना। फिर क्या हुआ, कुछ भी वर्णन नहीं, बस खुश हो गया कि हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ है। परंतु भगवान क्या है ये भी कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं कि सीढ़ी के चित्र पर तुम समझाओ। सीढ़ी का चित्र जब बनाया था, निवय भाई ने बनाया था और बाबा के पास लाए थे और बाबा को दिखाया था, बाबा ने उस पर काफी करेक्शन की थी और बाबा को बहुत पसंद आया था। तो बाबा हमेशा कहते थे ये चित्र बहुत अच्छा है, इस पे बहुत सेवा हो सकती है। तो बाबा कहते इस चित्र पर भी तुम समझा सकते हो। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं सीढ़ी के चित्र पर तुम समझाओ, ये है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो एक है भक्ति की बोट अथवा नाव और दूसरी है कौन सी, ज्ञान की नाव। तो आप सब कहाँ बैठे हो, है ज्ञान की बोट में बैठे हैं ना, तो वो तो भक्ति की बोट में है और तुम बैठे ज्ञान की बोट में। बाबा समझाते हैं एक है भक्ति की बोट अथवा नाव, दूसरी है ज्ञान की। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। बाबा कहते हैं हमने तुमको कल पहले ज्ञान दिया था। कब ज्ञान दिया था बाबा ने बताओ, कब ज्ञान दिया था, कल पहले है ना, कलप पहले दिया था ना, कलप पहले भी दिया और अभी भी दे रहे हैं, ऐसे बोलो, भूलो नहीं, कलप पहले में भूल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं हमने तुमको कलप पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था। अब तुम कहाँ पहुंच गए हो, कहाँ इतने ऊंच और कहाँ इतने महान, और अभी तुम कहाँ पहुंच गए हो, कहाँ हो। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, कैसे वो डायनेस्टी आती है, और कैसे झारवट, पहले एक ही देवता धर्म की डायनेस्टी है, फिर धीरे धीरे और डायनेस्टी आती है, फिर धीरे धीरे झारवट जी को पाता है। जैसे गुलदस्ता होता है ना, ये सृष्टि रूपी झाड़ भी क्या है, बाबा ने कहा फूलदान है ना। गुलदस्ता होता है ना तो उसमें फूल होते हैं, तो बाबा कहते हैं ये सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है, बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इसमें तीन और धर्म निकलते हैं, फिर उनकी वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद कर, अपने धर्म को याद करेंगे देवता धर्म को, तो साथ साथ आएगा कि कैसे वृद्धि होती है। तो बाबा कहते हैं इस धर्म को भी याद करना है, कितनी टाल टालियां आदि निकलती रहती हैं, पिछाड़ी में आने वाले का मान भी हो जाता है। बाबा कहते हैं ना हमेशा जो लास्ट में आत्माएं आती हैं तो उनका बहुत वो पवित्रता होती है, तो उनका मान भी होता है, लेकिन शुरू में जो बिल्कुल कंप्लीट पवित्र थे, लास्ट वाले तो थोड़े टाइम के लिए आते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उनसे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना है, कितनी टाल टालियां आदि निकलती रहती हैं, पिछाड़ी में आने वाले का मान भी हो जाता है। बड़ का झाड़ होता है ना बनियन ट्री, कई शहरों में होता है, लेकिन जो बनियन ट्री सबसे टॉप का है, फेमस है, वो कलकत्ता में बनियन ट्री है। तो वो कलकत्ता के बनियन ट्री का बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं, वो बढ़ता जाता है, हर पेड़ जो है वो ऐसा बढ़ता जाता है जैसे कि वही ओरिजिनल हो। लेकिन ओरिजिनल पेड़ कौन सा था, ओरिजिनल जड़ कौन सी थी, वो अभी तक भी रिसर्च करने में अभी तक भी नहीं मिला है। तो बाबा बता रहे हैं बड़ का झाड़ होता है ना, थुर है ही नहीं, झाड़ बढ़ता जाता है लेकिन उसका थुर मीन्स फाउंडेशन क्या है वो है ही नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल सड़ गया है, भारतवासी भी अपने धर्म को क्या हुआ, भूल गए ना। तो बाबा कहते हैं भारतवासी भी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते हैं, और सब अपने धर्म को जानते, और सब धर्म वाले बताएंगे कब स्थापन हुआ। तो देवी देवता धर्म है अनादि, लेकिन बीच बीच में भूल जाते हैं ना, ये कहते हम धर्म को मानते नहीं। दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं वो धर्म को नहीं मानते, मुख्य है ही चार धर्म, बाकी छोटे छोटे तो अनेक हैं। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो, देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है, फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्मों को विनाश कर देते, मीन्स उसको मर्ज कर देते, फिर अपने टाइम पर आते हैं। गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए, बाबा को होता था कि गोला मीन्स ये सृष्टि चक्र का चित्र जो है वो भी सबको समझाना चाहिए, गोले के चित्र पर जरूर ले जाना चाहिए, ये सत्युग है और ये कलयुग है, कलयुग में कितने धर्म है, सत्युग में है एक धर्म, एक धर्म की स्थापना अनेक अधर्मों का विनाश कौन करता होगा, भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे ना। बाबा ने उस दिन भी कहा कि मैं नहीं करता हूँ, ये कार्य ड्रामा अनुसार होता है, और फिर बाबा क्या कहते हैं जरूर किसके द्वारा कराएंगे, मैं थोड़ी करूंगा, तो बाबा कहते भगवान भी तो जरूर किसके द्वारा कराएंगे ना। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते, ब्रह्मा सो विष्णु, ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं, संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करनी पड़ती, बाबा जानते हैं ना बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो बाबा कहते हैं संगम पर तुम बच्चों को पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करनी पड़ती है, तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर कौन हो, भाई बहन हो, बाबा के बच्चे ब्रह्मा बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती, भाई बहन की आत्मिक दृष्टि रहती है। तो बाबा कहते हैं भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती, स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं कि हम भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। इसमें बड़ी मेहनत है, स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने के बिना रह नहीं सकते। जब देह अभिमान में आते ना तो फिर इस तरह की वृत्ति जाती है, जब आत्माभिमानी है तो फिर ऐसी वृत्ति नहीं जाती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भाई बहन को तो हाथ लगाना नहीं है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। हम तो बीके हैं, बाबा पक्का करा रहे, क्या समझती रहे कि हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं, हम तो बीके हैं। ये भूल जाते हैं तो फिर क्या रिजल्ट होती है, फिर खत्म हो जाते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, भल युगल वो रहते हैं किसको क्या पता, युगल हैं पवित्र रहते हैं वो जानते हैं, कहीं कहीं तो फिर भी धारणा में कभी कच्चे हो जाते हैं। अधिकतर युगल जो है वो तो बहुत अच्छी तरह से चलते हैं, बाबा भी जानते हैं वो भी जानते हैं। एक बार युगलों के लिए भी दादी ने यहाँ पर प्रोग्राम रखा था, अभी युगलों के लिए नीचे शांतिवन में बट्टी आदि के भी कार्यक्रम चलते रहते हैं। बाबा कहते वो जाने, हर एक अपना पुरुषार्थ खुद जानते हैं ना। तो बाबा कहते हैं किसको क्या पता, खुद जानते हैं कि हम फरिश्ते हैं, हाथ नहीं लगाना, मेहनत करनी पड़ती है ना फरिश्ता बनने के लिए। ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बन जाएंगे, नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। बनना है फरिश्ता तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं और बाबा के बच्चे आपस में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे करते करते फरिश्ता बन जाएंगे, नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। फरिश्ता बनना है तो क्या करना है, पवित्र जरूर है। बाबा को पूछते रहते बाबा हम फरिश्तापन की स्टेज का अनुभव करना चाहते, तो बाबा ने इसका उत्तर दे दिया। क्या सहज उत्तर है कि सूक्ष्म रीति संकल्प से भी पवित्र बनना है। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता बनना तो पवित्र रहना पड़े, ऐसा जोड़ी निकले जो नंबर वन जाए। बाबा के पास कई ऐसे ऐसे युगल आते थे, बहुत अच्छे पुरुषार्थी बिल्कुल धारणा में पक्के, फिर भी बाबा कहते थे ऐसे नंबर वन जाए, ऐसी जोड़ी निकले जो नंबर वन जाए। कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया, शुरू शुरू ज्ञान में सब आते थे ना, जब ये टॉपिक आती थी तो बाहर के लोग कहते थे अरे तुम लोग ऐसे क्यों करते हो, दादा ने तो ये सब अनुभव किए। लेकिन उस समय तो शिव बाबा आया ही नहीं था ना, शिव बाबा तो बाद में आया। तो बाबा कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया, पिछाड़ी में करके संन्यास किया, बहुत मेहनत है तो उनको जो जोड़ा बन जाते। बाबा जानते कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ एक बात उनमें ज्ञान और योग चाहिए। जोड़ा एकदम नंबर वन जाए तो उसके लिए बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान और योग चाहिए। बहुतों को आप समान बनाए तब बड़ा राजा बने। अब किसको बड़ा राजा बनना है, हाथ खड़ा करो, है छोटा राजा बनना है बड़ा राजा बनना है। बड़ा राजा बनने के लिए बाबा क्या कहते हैं, बहुतों को आप समान बनाए, एक है ज्ञान देना, एक है पब्लिक में बहुत ज्ञान दे दिया लेकिन उनमें से वारिस क्वालिटी निकालना, इसको बाबा कहते हैं राजा बनेंगे। तो बाबा कहते हैं बहुतों को आप समान बनाए तब बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है, बाप कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करो, ये है प्रजापिता। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से, कहीं जब अभिमान आ जाता है ना तो कहते हैं ब्रह्मा से क्यों कनेक्शन रखते। बाबा कहते थे भल रखो शिव बाबा से, करके तो दिखाओ, पुरुषार्थ करके तो दिखाओ, बात करके तो दिखाओ। बाबा भी कहते करो, तुम करो, शिव बाबा तो गुप्त है, शिव बाबा ने ये तन लिया, इस तन के बिना काम नहीं हो सकता। लेकिन तन में फंसना नहीं है, तो बाबा क्या कहते हैं, बहुत ऐसे हैं जो कहते हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, हम ब्रह्मा को याद क्यों करें। शिव बाबा ने कभी ये थोड़ी कहा कि ब्रह्मा को याद करो, बाबा ने तो कहा ही नहीं है कि ब्रह्मा को याद करो। कहते हम ब्रह्मा को याद क्यों करें, इनको पत्र क्यों लिखें। अब पत्र लिखेंगे तो केयर ऑफ तो लिखना पड़ेगा ना, पत्र लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। अब पत्र आएगा तो पत्र कौन पढ़ेगा, शिव बाबा भी पढ़ेगा तो ब्रह्मा तन के द्वारा ही पढ़ेगा ना, और पत्र भी पहुंचेगा ब्रह्मा बाबा के हाथ में। अब जैसे शुरू में पत्र लिखते थे फिर पक्का करना, देखो आज बाबा ने पक्का कर दिया ना, तो फोटो किसके, याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि नहीं, इसमें शिव बाबा आता है ये तो दे जा रही है। शिव बाबा कभी फोटो नहीं देने देते थे ब्रह्मा बाबा की, बाबा कहते देहधारी, लेकिन इस देहधारी को देखे बिना बाबा को कैसे याद करेंगे, लेकिन देखते हुए भी याद किसको करना है, बाबा को। ये तो देहधारी है, अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वे अपने को ईश्वर कहते हैं, फिर उनसे क्या मिलता है। दुनिया में कहते ना शिवो हम, तो अपने को परमात्मा कह देते ना, तो बाबा के तो उससे क्या वर्षा मिलता, और ही घाटा पड़ जाता है। वह तो अपने को ईश्वर कहते हैं, उनसे क्या मिलता है, कितना घाटा पड़ा है भारतवासियों को। एकदम भारतवासियों ने दिवाला मार दी, कितना धनवान, इतना धन, इतना रिच कंट्री, कल्चर भी इतनी ऊंच थी, बाहर की कंट्री ने आकर के उस कल्चर को देखा और वो इतना प्रभावित हुए, इतना धन लूट के ले गए। तो बाबा कहते हैं कितना दिवाला मार दिया है, एकदम भारतवासी ने दिवाला माया है, प्रजा से भीख मांगते रहते हैं, 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़ी है। अब लोन ले लिया, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, भूकंप आ गया, कुछ ना कुछ खत्म हो जाता, फिर कहाँ से, वापस है ही नहीं, तो वापस कैसे देंगे। तो बाबा कहते हैं फिर देना थोड़ी है, लेने वाले देने वाले ही दोनों खत्म हो जाए, लेने वाला बचे देने वाला ना बचे तो भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाता है, पैसा जो दिया सो दिया गया। तो बाबा क्या कहते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, संभाल संभाल के रखते हैं, आगे सेवा में लगाएंगे, बाबा कहते क्या मालूम क्या हो जाए, इसलिए जो जितना है जल्दी जल्दी सफल करते जाओ। तो बाबा कहते हैं खेल ही खत्म हो जाना है, अनेक मुसीबतें सिर पर हैं, दिवाला मारना, बीमारियां आदि बहुत हैं, कोई तो साहूकारों के पास रख देती, पहले जमाने में ऐसा था, कोई लोग गरीब साहूकार के पास पैसा रख देते थे, साहूकार दिवाला मारा तो गरीब का पैसा चला गया। अभी भी कई कई लोग क्या करते हैं, कई कई कंपनीज में जाकर के डिपॉजिट कर देते हैं, और वो कंपनी भी फेल हो जाती है, कंपनी फेल तो पैसा भी गया। कई फिर ऐसे भी वंडरफुल लोग हैं, वो गुप्त रीति से किसी ना किसी के पास पैसा रख देते हैं और फिर वो धोखे से उसको देता नहीं। कई आते हैं हमारे पास, बहन जी हमने इस व्यक्ति को इतना दिया था और वो अभी हमारा देता नहीं। इसके लिए बाबा और दादी हमेशा कहते थे कभी भी पैसे की लेन देन आपस में नहीं कर, और ब्राह्मणों को तो खास करके पैसे की लेन देन कभी भी आपस में नहीं करनी है। और फिर जब नहीं मिलता है ना, कई बार उसको दे देते हैं, फिर जब नहीं मिलता है तो आएंगे, बहन जी हमारा ये काम करा दो, हमको नहीं देता। अरे जब तुमने दिया था उस समय बताया था, उस समय नहीं बताएंगे, उस समय गुप्त रीति से करते। तो बाबा पक्का कराते हैं, ब्राह्मणों का ये हिसाब किताब हो जाता है, तो ब्राह्मणों को क्या करना है इसमें भी बहुत क्लियर लेना रहना है। बाबा के कार्य कर सकते हो करो, अपनी संभाल खुद करो, ऐसे कभी नहीं करना ना तो किसी कंपनी में, आजकल फ्रॉड कंपनीज भी बहुत होती है, इतना दोगे तो इतना बढ़ के मिल जाएगा, कई कई ऐसे करते हैं, वो भी गया मिलना तो क्या, वो भी चला जाता है। इसलिए पैसे की लेन देन के लिए बाबा हमेशा गाइड करते रहे और दादी हमेशा कहती थी इस मामले में सबको बहुत ही सतर्क रहना है, बाबा को याद करो, सेवा करो, अपना पुरुषार्थ करो। तो इसलिए बाबा क्या बता रहे हैं, कोई कोई साहूकार के पास रख देते हैं कोई कोई साहूकार के पास रख देते हैं, वह दिवाला मार देते हैं, तो गरीबों को कितना दुख होता। गरीब ने रखा, सोचा मिल जाएगा समय पर, वो दिवाला मार, बेचारे के सारी जन्म की पूरे जीवन की कमाई खत्म हो जाती है, तो गरीबों को कितना दुख होता है। कदम कदम पर दुख ही दुख है, अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं, ये है मृत्यु लोक। अमर लोक में तुम अभी जा रहे हो, अमरपुरी के बादशाह बनते। क्या बनते हो, क्या बोलते हो, बोलो, अमरपुरी के। धीरे धीरे ऐसे थोड़ी है, नशे से बोलो ना, हम अमरपुरी के बादशाह बनते हैं। पक्का नशा रहे है ना, धीरे धीरे नहीं है ना। तुम अभी अमर लोक में जा रहे हो, अमरपुरी के बादशाह बनते हो। अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे। अच्छा भाई लोग हाथ खड़ा करें जो समझते हम पार्वती है, थोड़ी है ना, बाकी नहीं है ना, सभी पार्वती है, आत्मा रूप में पार्वती है ना। तुम अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। तुम जानते हो अमर बाबा हैं, हम उनसे अमर कथा सुन रहे। हमारा बाबा अमर है, हम उनसे अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमर लोक जाना है, इस समय तुम हो संगम युग पर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे मंथन कर। ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। दूसरा, राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की भी सर्विस करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। आज का वरदान, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भाव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। सारे संबंध बाबा के साथ हैं, बाकी लौकिक में जो है वो तो निमित्त मात्र हैं। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के हैं साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप के साथ होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई भी बोझ नहीं होगा। कितनी पॉइंट्स बाबा ने बताई, सर्व संबंध एक बाप के साथ होंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पहला है कि सब संबंध बाकी सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। दूसरा, वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे। तीसरा, कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। चौथा अथक होंगे। पांचवा बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। छठा विघ्नों के कारण रुकने की बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। और सातवां सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे। आठवां कोई बोझ नहीं होगा। नौवां सर्व कंप्लेन समाप्त होंगी। और दसवां है कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा। और ग्यारह है सहज योगी बनेंगे। ग्यारह पॉइंट मिल गए एक छोटी सी बात के अंदर कि सर्व संबंध बाबा के साथ रखने और कितनी बड़ी प्राप्ति होती। स्लोगन संकल्प में भी किसी ध्येयधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। संकल्प में भी किसी ध्येयधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना है। अब एक इशारा आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने होता ना उसमें सैटेलाइट में जाते ना, जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां भी चित्र खींचना चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो। अभी हम सुनेंगे मातेश्वरी जी की विशेषता। आज की तारीख है 20 तारीख शुक्रवार। ट्रस्टीपन के गुण से सर्व संबंधों से मुक्त रहने की शक्ति। मम्मा हर समय ट्रस्टीपन की स्थिति में रहती थी। ट्रस्टीपन के गुण से सर्व संबंधों से मुक्त रहने की शक्ति। बाबा ने अपना सब कुछ बहनों के हवाले किया। मम्मा को उसका मुख्य ट्रस्टी बनाया। बाबा का जो सब कुछ था बाबा ने एक ट्रस्ट बना दी, सब बहनों की ट्रस्ट बना दी और मुख्य ट्रस्टी थी मम्मा। मम्मा को उसका मुख्य ट्रस्टी बनाया। मम्मा पूरे यज्ञ को ट्रस्टी बनकर संभालती और उसे आगे बढ़ाती। कुछ भी व्यर्थ नहीं किया। और तो मम्मा क्या करती थी, मम्मा उसको ट्रस्टी बन के संभालती और उसे आगे बढ़ाती रही। कुछ भी व्यर्थ नहीं किया और किसी भी बंधन में नहीं बंधी। सदा सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव किया। वे कभी भी परतंत्र नहीं बनी। ऐसे हमें भी ट्रस्टीपन की भावना रख सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र उड़ता पंछी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। सभी भाई बहने बैठे रहेंगे, एक आवश्यक सूचना सुन के जाएंगे। अच्छा, आज क्लास की टोली बाबा की झोपड़ी के पास गरम गरम भुट्टा मिल रहा है, वहां जाकर के टोली लेंगे। अभी सूचना आप सबको मालूम है, सारा जानते भी हैं। आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख है, इंटरनेशनल योगा डे है, जो कि पूरे विश्व के अंदर बहुत ही धुंधा मिस बहुत ही योगा प्रैक्टिस योगा एक्सरसाइज के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर भी कई भाई बहने करते रहते हैं, वैसे बन भी करते हैं। बाबा कहते हैं तन और मन दोनों को स्वस्थ रखना है। तो कल प्रातः 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है। सामूहिक रूप से योग के लिए 6:30 बजे पोलो ग्राउंड में पहुंचना, क्योंकि हर वर्ष ये इंटरनेशनल योगा डे पर पोलो ग्राउंड में माउंट आबू के सभी लोग, व्यवसायी लोग, संस्थाओं के लोग, मिलिट्री आर्मी जो भी है सब के सब वहां पर एकत्रित होते हैं। वहां पर 7 बजे से योगा एक्सरसाइज का कार्यक्रम आरंभ होता है। तो इसलिए कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है। सामूहिक रूप से योग के लिए 6:30 बजे तक पोलो ग्राउंड में पहुंचना है। वहां पर ब्रह्मा कुमारी इसके लिए एक विशेष स्थान बनाया गया है। इसके लिए खास बात बताएं कि हमारे भाइयों को हम बताते हैं जो चल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो अवश्य जाएं और वहां जाकर के वहां करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारी बुजुर्ग माताओं को बहुत शौक रहता है और बहुत एक्टिव रहती है, उनको करना भी अच्छा लगता है। वो जब जाती है ना तो वो आगे की तरफ, जैसे आगे स्टेज है ना, वहां पर सब वीआईपी से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और वहां से वो आगे से क्रॉस करती है। इसलिए सबको बता रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसके जो भी जाएंगे वहां पर योगा डे के लिए पोलो ग्राउंड में, जहां उनका स्थान बना है वहां जाना है और साइड से जाना है, बीच से नहीं जाना है, आगे से नहीं जाना, क्योंकि आगे जो है सब वीआईपी पहले से बैठे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। जो नहीं बैठ सकता है वो बिल्कुल नहीं जाए, यहाँ बैठ करके अपनी छोटी छोटी एक्सरसाइज करें। लेकिन भाइयों को हम कहेंगे जितनी ज्यादा संख्या में जा सके उतना ही अच्छा रहेगा। जो भी जाना चाहते हैं वो 6:25 पर ट्रांसपोर्ट जाने पर से उनको सुविधा मिलेगी। कई तो पैदल भी जाते हैं और कोई भी ट्रांसपोर्ट का लेना चाहते हैं तो 6:20 तक उनको ट्रांसपोर्ट के पास पहुंच जाना है और ट्रांसपोर्ट से 6:25 से उनको ट्रांसपोर्ट मिलेगा। वहां पर पोलो ग्राउंड में आपको छोड़ेंगे और वहां जाकर के आप योगा डे मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज है उसका वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जो कर सकते हैं वो जाए, ऐसा नहीं कर भी नहीं सकते वहां देखने के लिए बैठे रहे और वहां जाकर के कहीं नहीं हमको कुर्सी दो, कुर्सी किसी को भी नहीं मिलेगी। जो जमीन पर बैठ सकते हैं, जो फ्लेक्सिबल है शरीर की रीति से और जो करना चाहते वही जाएं, बाकी यहां पर ही बाबा की मुरली जैसे चलती हुई चलेगी, 7 मुरली चलेगी, मुरली का कार्यक्रम जैसे है वैसा ही रहेगा। तो अच्छा, इसके बाद योग के बाद बट्टी के भाई बहने बैठे रहेंगे, आपको याद बाबा के घर से याद सौगात मिलेगी। ओम शांति। आप सबको एक खुशखबरी सुना रहे हैं हमारे आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई, स्वास्थ्य लाभ के लिए अहमदाबाद में काफी टाइम रहे, डॉक्टरों ने तो अच्छी तरह से देखभाल की, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उनको क्योर किया और अभी उनका स्वास्थ्य जो है ठीक है, स्टेबल है, इसलिए उनको अभी ओआरसी में ले आए हैं। तो कल ओआरसी में शिफ्ट हो गए हैं। सब ताली तो बजाओ, खुशी से ताली बजाओ। हाँ, आप सबकी शुभकामनाओं ने बहुत बड़ा मैजिक कर दिया और बाबा तो साथ है ही है, तो सबको जानकारी रहे। अच्छा, ओम शांति। वैसे भाई साहब ब्रेन माइंड की रीति से बिल्कुल एक्टिव, हर बात हर कारोबार करते, हर कारोबार का जवाब देते, सब कुछ कर रहे थे। अच्छा, अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद बट्टी के सभी भाई बहने जिनको खाना खिलाने की भी ड्यूटी है वो भी बैठेंगे, क्योंकि उनको भी याद सौगात मिलेगी। ओम शांति।